संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तु माम भक्तिया पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या, कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कहे कि जो मेरे पास आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपया दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ बैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपये मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको ये विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपिचेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वो मेरी शरण नहीं होते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है, कि इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत ये दो पद दिए गए। तात्पर्य यह है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहे तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मनाही नहीं है। कोटि विप्र बदला गई जाहू आए शरण तजव नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष भाव तो है ही नहीं ना। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग किया है। सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो सुष्ठु दुराचारी है, सांगो पांग दुराचारी है, दुराचार करने में उसने कोई कमी नहीं रखी, दुराचार का अंग उपांग न छूटे ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहां भजते क्रिया वर्तमान की है, इसका करता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार वश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है, ऐसी अवस्था में भी मेरा भजन करता है। कारण कि उसका ध्येय अन्य का नहीं है, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मुझमें लगने का ही है। अब ये शंका होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं। पहला, वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं कोई किंचन मात्र भी सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि अरे भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है आदि। दूसरा, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहां बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा, वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है, ऐसी कोई कथा सुनकर के पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। चौथा, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहां उसके बचने की अब कोई संभावना ही नहीं है, पर वो बच गया, ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है, वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण होना चाहिए। पांचवा, उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि पर हुई, अजामिल पर हुई, और भी कई प्राणियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं, ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती है। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान के भजन में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा? कि यहां अनन्य भाग का अर्थ वह तैल धारावत चिंतन करता है ये नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्यम भजति, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता, उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का ही चिंतन करती है, ऐसी बात नहीं, वह तो हरदम पति की बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है, ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में तीन बात है। पहला, अहंता को मिटाना, ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम का भान होता है वो प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशी रूप मेरा नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वो अपना स्वरूप नहीं होता, इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। दूसरा, अहंता को शुद्ध करना, कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मुझे पुत्र न माने, मुझे दुख दे, मेरा अहित करें, तो भी मुझे उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मुझे केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है, उनके कर्तव्य की तरफ मुझे देखना नहीं है कि वो मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो ही जाता है। अतः उनका तो मुझ पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चले ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहमता शुद्ध हो जाती है, कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहंता अशुद्ध होती है। तीसरा, अहंता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता एक पति की होकर रहती है, तो फिर वह माता पिता सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है तो उसकी अहंता बदल जाती है। इस अहंता के बदलने को ही यहां अनन्य भाग कहा है, साधुरेव समंतव्य है। अब यहां एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यह मंतव्य विधि वचन है, इसका भाव यह है कि यह भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वहीं कही जाती है जहां साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचन मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए ऐसा क्यों कहते? तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार हैं, वह दुराचारियों से सर्वथा रहित तो नहीं हुआ है, वह अभी सांगोपांग साधु भी नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। बाहर से उसके आचरणों में, क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं अब संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार ये भीतर से ही भगवान का हो गया, उसने भीतर से ही अपनी अहंता बदल दी, इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अहंता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतर के भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-50 वर्षों से जानते हैं, पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के यहां से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे पर यह तो वैसा ही है, ये तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उसके अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है, जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वो उठ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं और वो अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और कहीं एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए हाथ में गोमुखी लिए हुए बैठा है, उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है, उसको देखकर कोई कहता है कि देखो भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है, तो दूसरा कहता है कि अरे तुम इसको नहीं जानते, मैं जानता हूं, यह तो ऐसा है वैसा है कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मानते हैं, और उधर साधन भजन करने वालों को भी वेश्या के घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वेश्या ने बुलाया होगा, क्या पता वह दया परवश होकर वेश्या को शिक्षा देने गया होगा, उसके सुधार के लिए गया होगा, उस तरफ उनकी दृष्टि जाती नहीं। जिनका अंतःकरण मेला हो वो मेलेपन की बात करके अपने अंतःकरण को और मेला कर लेते हैं, उसका अंतःकरण मेलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु उपर्युक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं। रहते न प्रभुचित चूक किए की करत सुरती सयबा रही की, क्योंकि भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन है, सम्यक व्यवसितो ही स। दूसरे अध्याय में कर्मियों के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात आई है, 41वां श्लोक। वहां पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मुझे राग द्वेष नहीं करने, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है, अतः कर्मयोग की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है, और यहां कर्ता स्वयं व्यवस्थित है, सम्यक व्यवस्थित है, कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूं, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है, यह निश्चय स्वयं का है बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहां निश्चय करण में है और यहां निश्चय कर्ता में है। करण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्म तत्व से अभिन्न हो जाता है तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में भी निश्चय हो जाता है, इसमें तो कहना ही क्या है। जहां बुद्धि का निश्चय होता है वहां वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्य का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं हुई, प्रत्युत साथ में संसार का सुख आराम आदि को लेने की भी रुचि रहती है, परंतु जब स्वयं का यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मुझे पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से यह कभी मिटता नहीं, प्रत्युत बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूं और अब केवल भगवान का ही काम करना है, भजन करना है, भजन के सिवा और कोई काम नहीं है, किसी काम से कोई मतलब नहीं है, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो आगे के श्लोक में आने वाला है। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुक्ता पर ही टिके हुए हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सन्मुख हो जाता है तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव, ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है। एषाते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि व्यवसित होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है, व्यवसायत्मिका बुद्धि 244। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवसित होता है, सम्यक व्यवसित हो इस है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती। कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उस स्वयं में जो बात होती है वो अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति होती नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है। परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटानी है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा 18 का 73। दूसरों के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, यही मोह था।